महाबंध पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 3। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूवं, भूतबलि प्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकं, महाधवल विख्यातं महाबंधम नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है। इसमें तृतीय अनुभाग बंध अधिकार चल रहा है और चौथी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 11 पर अभी हम आ गए। 1-1 देखो, अभी यहाँ पर हम उत्कृष्ट अनुभाग बंध के स्वामी की चर्चा चल रही है। स्वामित्व में उत्कृष्ट का भी बताएंगे, जघन्य का भी। पहले उत्कृष्ट की बात हो रही थी, वो हमने ओघ में देख ली थी। तो जो घाती कर्म है सभी अप्रशस्त है, तो उनमें उत्कृष्ट जो है वो संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि सभी पर्याप्तियों से पर्याप्त साकार जागृत उत्कृष्ट संकलेश में जो विद्यमान है और उत्कृष्ट अनुभाग बंद कर रहा है, ऐसे सारे कंडीशन बताई थी। और वेदनीय नाम और गोत्र के लिए वो 10वें गुण स्थान में होता, शपक अंतिम अनुभाग बंध में स्थित है ऐसा लिया जी। आयु के लिए तो अप्रमत्त, अप्रमत्त वाला तत्प्रायोगिक विशुद्धि वाला। फिर हमने मार्गणाओं में देखते देखते अभी हम आए हैं 11 पेज पर, औदारिक मिश्र कायोगी जीवों में यहाँ बात चलेगी। चार ये योग मार्गणा में पहले औदारिक मिश्र को लिया, क्योंकि कायोगी का तो ओग के समान होगा, उन्होंने औदारिक कायोगी का भी ओग के समान बताया है, पर ओग में चारों गति लिया, यहाँ तो 2 गति की बात है। यानी औदारिक कायोग वाले में तिर्यंच गति और मनुष्य गति के जीव वही वो सारे पर्याप्त संगी वगैरह वगैरह सभी बातें लगा लेना। मनोयोगी और वचन योगी में भी ऐसा ही होगा, 5 मनोयोगी 5 वचन योगी ओग के समान, कायोगी ओग के समान, औदारिक कायोगी ओग के समान। तभी औदारिक मिश्र से शुरुआत की उन्होंने। चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, तो कहते संगी मिथ्या दृष्टि तिर्यंज या मनुष्य। औदारिक मिश्र ने वो लब्धि अपर्याप्त को लेना है, या पर्याप्ति पूर्ण करने वाला उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि आयु के लिए तो लब्धि अपर्याप्त को लेना। बाकी औदारिक मिश्र काय योग हमारी मार्गणा है, अपर्याप्तों की मार्गणा नहीं है, तो उसमें विशुद्धि वो जो पर्याप्त होने वाले जीव को लेना, 2 उसकी अपेक्षा है, अंतिम समय भी या कहीं पर भी हो सकती है। तो कहते तिर्यंच या मनुष्य साकार जागृत, यह उत्कृष्ट अनुभाग में लिखा है, तो उसमें नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त ऐसा लिखना था, हमने ऐड किया था लास्ट में। साकार जागृत और के बाद नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त, अन्यत्र जैसे उन्होंने लिखा था हमेशा ही, ऊपर भी हमने प्राकृत में डाला था। ये पहले लिख लो हिंदी वाला उत्कृष्ट नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त, ऊपर लिखना है नियमा तो लिखा है, तो यहाँ उपक बिंदी संकिली बिंदी, जैसे लेफ्ट साइड में 10 पेज पर लिखा है वैसा, उपक बिंदी संकिली आपको देखना है ना कैसा लिखा है, 10 पेज पर देखो ऊपर से 5वीं लाइन में सागा जा नियमा उक्क संकिली और उक्क वट्ट नहीं
नहीं
संकिली के बाद वहाँ उक्कस अनुभाग वट्ट लिखा है फिर उक्क वहाँ नहीं लिखना है हमको केवल नियमा के बाद उक्क संकिली इतना ही लिखना है उत्कृष्ट संकलेश युक्त हो गया उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर पंचेंद्रिय उक्त जीव संगी पहले बता चुके हैं चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है उत्कृष्ट संकलेश लिया तो वो सारे अप्रशस्त घाती कर्म ले लिया यहाँ मूल की बात है मूल प्रकृतियों की वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है सम्यक दृष्टि सर्व विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित वेदनीय में साता बांध रहा है नाम में यथायोग्य देवगति भी बांध रहा है वहां पर यश कीर्ति भी बांध रहा है इस तरह से ले सकते अन्यतर तिर्यंच और मनुष्य देखिए औदारिक मिश्र में तिर्यंच और मनुष्य सम्यक के साथ उत्पन्न होने वाला लेना है तिर्यंच में किसको लेना कहाँ से आया वो हाँ तेजल भोग भूमि में ये मनुष्य में जाएगा क्षायिक करके वो जीव लेना है क्योंकि बिना क्षायिक के तो तिर्यंच में कोई सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता
मनुष्य में आने वाला जीव लेना ना
वो तो मनुष्य हो गया वो औदारिक मिश्र तिर्यंच में भी होता है
हाँ
तो औदारिक मिश्र अवस्था में उसको लेना तिर्यंच भोग भूमि का हुआ क्षायिक के साथ वो लेना
ये हमने देखा कि शुक्ल एशिया में उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है ओक की अपेक्षा तो यहाँ पे जो ये जो भूमि में तीन उत्पन्न हो रहा है उसकी कापो की और मनुष्य
कोई भी लेशा हो चौथे गुण स्थान में औदारिक मिश्र की बात है औदारिक मिश्र में लेशा से कोई संबंध नहीं है यहाँ पर चौथे गुण स्थान के योग्य विशुद्धि देखना है केवल नहीं तो अकेले मनुष्य कहते और वो सर्व सिद्धि से आने वाला कहते उसकी कोई बात नहीं
तो यहाँ पे भी यह मनुष्य लेना वो भी शायद लेना पड़ेगा के
नहीं 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 मनुष्य तो कोई भी ले सकते हैं सम्यक दृष्टि लिखा है सर्व विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला है अब आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी कौन है ये तो लब्धि अपर्याप्त की है ना तो संगी मिथ्या दृष्टि तिर्यंच या मनुष्य साकार जागृत तत्प्रायोग्य विशुद्धि वाला लिया क्योंकि ये दोनों ही कैसी है शुभ आयु है और करोड़ पूर्व की तो बांध ही सकते हैं उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर पंचेंद्रिय उक्त जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है अभी औदारिक मिश्र की बात हो गई अब वैकृत कायोगी जीवों में देखेंगे चार घाती कर्मों के जैसे ओग में देखा था वैसा ही है चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है साकार जागृत अब यहाँ संगी और पंचेंद्रिय लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो संगी पंचेंद्रिय ही है 11 नंबर का पेज ये हम स्वामित्व देख रहे उत्कृष्ट का हमने औदारिक मिश्र में देखा है यहाँ वैकृत कायोगी में देख रहे हैं तो कौन स्वामी है तो साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित यहाँ सब पर्याप्ति से पर्याप्त होने की भी लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वैकृत कायोग तो पर्याप्तों के होता है अपर्याप्तों में तो वैकृत मिश्र होता है उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर देव या नारकी मिथ्या दृष्टि जीव क्योंकि संकलेश उत्कृष्ट चाहिए मिथ्या दृष्टि उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है मिला अरविंद हाँ वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है अभी इसको समय दृष्टि को लेंगे, साकार जागृत नियम से सर्व विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर देव और नारकी समय दृष्टि जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? तो साकार जागृत तत्प्रायोग विशुद्धि युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर देव और नारकी समय दृष्टि जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। समय दृष्टि ही लिया, मनुष्य आयु बांधेंगे और यहाँ चौथे वाले को विशुद्धि ज्यादा है तो अधिक अनुभाग सहित बांधेंगे। केवल स्थिति बांधते तो कोई भी बांध सकता है करोड़ पूर्व की, परंतु यहाँ अनुभाग भी उत्कृष्ट होना चाहिए। इसी प्रकार वैकृत मिश्र कायोगी जीवों में जानना चाहिए। यहाँ आयु का बंधन नहीं है। हाँ, आपका प्रश्न माइक में पूछेंगे। हाँ,
आयु कर्म में उत्कृष्ट अनुभाग क्या हो सकता है?
हाँ, आयु कर्म में उत्कृष्ट अनुभाग क्या, जैसे स्थिति तो हम बता सकते हैं परंतु अनुभाग क्या उसका एक्सप्लेनेशन हम नहीं कह सकते। लास्ट टाइम भी यही चर्चा हुई थी ना, आयु कर्म में कैसे पता चलेगा अनुभाग अधिक है क्या कम है? वो अधिक विशुद्धि से बांधी है और अधिक अनुभाग वाली है, यानी उसका फल क्या मिलता होगा ये हम कह नहीं सकते। हाँ, उसके उदय उसके अनुभाग का फल क्या होगा? अधिक स्थिति तो समझ सकते हैं, लंबी स्थिति है परंतु अनुभाग भी ज्यादा है। नहीं तो मनुष्य तो ये तो आयु में क्या है, बस इतने आयु जिएगा वो, यानी उसमें उत्कृष्ट अनुभाग वाला शायद पता नहीं
पुण्य का उदय ज्यादा रहेगा ऐसा रहेगा ऐसा वाला भी
वो बाकी प्रकृति में कुछ नहीं, आयु में अनुभाग का उदय है उसका अर्थ क्या, अनुभाग में क्या लेना पता नहीं। वही लास्ट टाइम भी हमको वो पता नहीं चला था अनुभाग से
डिस्कशन हुआ था पर हम लोग को
अभी हम लोग का अनुभाग
किसके अभी आप आने की इच्छा है ना
देखना वो मिला हम लोग को
आयु की बात है यानी स्वाधीन मिला ना 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 केवल आयु नहीं, आयु का तो तुम्हारा कितना उदय है तुम कितने जीओगी बस इतना ही। आयु में तो क्या है भव संबंधी भव विपाकी है आपको मनुष्य भव में आप इतने साल तक रहेंगे। हाँ, लंबी आयु में प्रशस्त कर्म है तो लंबी आयु में अनुभव ज्यादा हो रहा है ये तो हमने अभी तक डिराइव किया है। लंबी आयु में अनुभव अधिक बनता है बस इतना ही कहा मैंने। जैसे अप्रमत्त वाला जैसे लंबी आयु है अभी देव जो है मिथ्या दृष्टि भी करोड़ पूर्व की आयु बांधते हैं और यहाँ समय दृष्टि को लिया इसे उसमें कुछ विशेषता होगी।
उत्कृष्ट आयु के अनुभव के साथ सातवें बनता है तो उसको सातवें का बनता उदय कम होगा इसे कुछ नहीं
साता का उदय तो अंतर्मूर्त में अंतर्मूर्त और जो आयु का उदय तो एक भव के लिए है और तुम्हारा साता का उदय कहाँ का 15 कोड़ा कोड़ी में से कहीं का भी हो सकता है। हाँ, और वो असाता का साता में कन्वर्ट होकर भी आ सकता है उसके साथ उसकी कंपेयर नहीं कर सकते। साथ में बंधा है इसलिए साथ में उदय आता है वो नहीं, उदय का सन्निकर्ष नहीं है वो बंध का सन्निकर्ष
है। हाँ,
वो उदय का सन्निकर्ष पर वही बंधे वाला वही समय उदय में आया ये गारंटी तो है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, आगे बढ़े। इसी प्रकार वैकृत मिश्र कायोगी जीवों में जानना चाहिए परंतु इनके आयु कर्म का बंधन नहीं होता तथा इतनी विशेषता है कि इनके वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? देखो, उपशम श्रेणी से गिरकर प्रथम समय में देव हुआ क्योंकि अभी वो द्वितीय उपशम में है अन्यतर जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बनने का स्वामी है तो चौथे गुण स्थान वाला है, पर अभी द्वितीय उपशम उसका चल रहा है, उपशम से गिर कर वो प्रथम समय में देव हुआ है।
तो ये रुजुगति से जाने वाला,
रुजुगति से नहीं भी जाए तो उसका तो वैकरिक मिश्र में तो प्रथम समय में देव हुआ बिना तो मोड़ वाला, यानी उपशम श्रेणी में से गिर करे ना, वो चौथे में तो अभी आया है, श्रेणी में मर गया, श्रेणी में कहीं पर भी मर गया। हाँ
श्रेणी में भी ऊपर के गुरु स्थान में जो आठवें नौवें में मरण होगा उसका होगा कि जो चढ़ते समय होगा उसका,
ऐसा कुछ नहीं, उपशम श्रेणी से गिर कर प्रथम समय में देव हुआ।
हाँ
मर कर गिरता है ना, क्या गुरु स्थान गिरता
है, सबको दो मोड़
रहेगा
तो
भी
उसका समय तो
कायम रह सकता है। यहाँ प्रथम समय वाला लिया ना, वहाँ तो नेक्स्ट समय लिया, इमीडिएट नेक्स्ट समय नहीं, द्वितीय ऑप्शन नहीं छूटेगा क्योंकि अभी तो वैसे तो छठे तक आकर चौथे तक भी जा सकता है, इतना बड़ा अंतर्मुहूर्त है उसका। तो हाँ देव में उपशम द्वितीय ऑप्शन के साथ, हाँ बाद में वो वैकरिक मिश्र अवस्था में ही वो वेदक समय दृष्टि हो, क्षोभ समय दृष्टि छूट तो सकता है क्योंकि वो वेदक समय दृष्टि हुआ, चौथे गुण स्थान वाला हुआ तो हमने तो कहा ना श्रेणी चार बार चढ़ के उतरा हुआ भी जीव आगे मिथ्यात्व में भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी श्रेणी में मरा है तो हाँ शुक्लेशा में मरा है, शुक्लेशा वाले देवों में उत्पन्न होगा, यहाँ लेना वो बाकी लेशा है इसलिए विशुद्धि नहीं लेना है, मनुष्य तिर्यंश में उत्पन्न होने की अपेक्षा वो नहीं लगाए थे, यहाँ श्रेणी में ऑलरेडी वो ऊपर के गुण स्थान में था, विशुद्धि बहुत थी और वो पहला समय का देव था। हाँ
वो शुक्ल लेशे वाले मुनि थे।
हाँ
तो वो ग्रहवेग के ऊपर जाएंगे समझो अनुदिश अनुत्तर में, तो वो तो मिथ्या तो में आने का चांस ही नहीं है,
अनुदिश अनुत्तर में ही उत्पन्न हो गए ऐसे जरूरी नहीं, कितनी आयु
वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर वो समझो आरण अच्युत आदि में जाएंगे या ग्रहवेग तक भी जाएंगे तो वहाँ मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, ऐसा मेरा कहना
बाद द्वितीय ऑप्शन।
आपने जो बताया
वेदक हो जाता है नहीं, उनका क्या कहना है कालांतर में वो मिथ्या तो में जा सकते हैं कि नहीं, तो जा सकते हैं,
आपका प्रश्न था ना इसलिए बताया,
तो
मिथ्यात्व में भी जा सकता है,
है वो ऊपर के इसमें,
हाँ बिल्कुल
वो ऊपर के देवों में गया मतलब अनुदिशानुत्तर में, तो वहाँ तो सम्यक दृष्टि होंगे
बिल्कुल, और क्षायिक के साथ अगर उपशम श्रेणी चढ़ा हुआ है तो सवाल ही नहीं मिथ्यात्व में जाने का, नहीं पर क्षायिक के साथ वो द्वितीय उपशम वाला नहीं होगा, वो क्षायिक वाला कहलाएगा, वो द्वितीय उपशम वाला नहीं हो सकता,
उसको भी नहीं लिया
नहीं, वो तो उसका तो यानी उसने चारित्र में उसने ये उपशम किया है परंतु उसको तो लेना ही नहीं है, उसका सवाल नहीं, उसकी जितनी विशुद्धि श्रेणी संबंधी उतनी ही, इसकी अभी श्रेणी की भी और द्वितीय उपशम उसका चल रहा है इसलिए उसकी विशुद्धि ज्यादा ली, नहीं तो क्षायिक के साथ भी मरकर जा सकता था ना,
पर यहाँ पे उपशम श्रेणी से जिनका प्रथम समय में देव हुआ वहाँ पे द्वितीय उपशम की बात ही नहीं है,
वो तो हम समझ सकते हैं, हर बात थोड़ी लिखेंगे डिटेल में, उपशम श्रेणी में गिरकर मरकर देव हुआ है, शाही भी जा सकता है, शाही समय दृष्टि भी जा सकता है, वो उपशम श्रेणी से गिरकर
दोनों ले सकते हैं,
ये गिरने वाला क्या, ये तो चौथे गुण स्थान में जाता है वो अपेक्षा से बात है,
यानी वो तो क्षायिक वाला भी ले सकते हैं। हाँ यहाँ हमने द्वितीय उपशम वाला लिया है, परंतु उपशम श्रेणी से तो क्षायिक वाला भी गिर सकता है, ऐसे कोई सा वो कौन सा है उस समय तो उसकी कोई बात नहीं है, वो श्रेणी में उसकी विशुद्धि ज्यादा थी और नेक्स्ट समय में उसकी उतनी उसके योग्य अधिक विशुद्धि होगी उसकी। हाँ अभी यहाँ 12 नंबर के पृष्ठ पर आहारक कायोगी और आहारक मिश्र कायोगी जीवों में ये तो छठा गुण स्थान है, चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? तो साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर उक्त जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है।
आरक कायम होता है तभी जीव पांचवे
हाँ वही मैं उसमें तो मिथ्या तो के सन्मुख नहीं होगा ना आहारक का युग, आहारक का युग में वो पांचवे के सन्मुख होगा क्या?
नहीं पर आहारक का युग रहते हुए वो पांचवे के सन्मुख हो सकता है क्योंकि मध्यम परिणाम में वो आहारक का युग बनाएगा, विशुद्धि में तो वो सातवें के सन्मुख
वो आहारक का युग में नहीं होगा वो
तो पांचवें गुणस्तर के सन्मुख भी नहीं हो सकता।
पांचवें क्या आपका प्रश्न तो आप मिथ्यात्व के भी सन्मुख कहोगे?
नहीं मिथ्या
संयतों के लिए मिथ्यात्व के सन्मुख वाली बात होगी पर यहाँ तो बस उनके लिए जो उत्कृष्ट संकलेश है इतना ही
तत्प्रायोग
काय योग के चालू है। देखो क्या कहते हैं तत्प्रायोग नहीं
उत्कृष्ट संकलेश
उस मार्गणा के लिए उत्कृष्ट संकलेश है तो अन्य दर्जी उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। चार घाती कर्म वेदनीय नाम और गोत्र कर्म अब यहाँ विशुद्ध लेना उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? बंध ध दिखता है क्या बराबर साकार जागृत सर्व विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर उक्त जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत तत्प्रायोग विशुद्धि युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित यानी आयु के बंधने योग्य उसके तत्प्रायोग विशुद्धि होगी। अन्यतर जीव उक्त जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। इतनी विशेषता है कि आहारक मिश्र का योग में जो जीव शरीर पर्याप्ति को ग्रहण करेगा वह आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है।
तो यहाँ पे मिश्र का योग में उन्होंने आयु का बंध
यहाँ महाबंध में स्वीकार है। उन्होंने कहा आहारक मिश्र का योग में आयु का बंध हो सकता है क्या? तो हाँ महाबंध में सर्वत्र उसको स्वीकार है, मरण भी स्वीकार है। नहीं मिश्र वाले में कब होगा क्योंकि मिश्र का काल कितना है अंतर्मुहूर्त उसमें से आयु बंध कभी भी हो सकता है तो उसके अंतिम समय में अंतिम समय का अर्थ है कि नेक्स्ट समय में आहार का योग होने वाला है शरीर पर्याप्ति पूरी होने वाली ऐसा जीव लेना यानी वहां पर उसकी विशुद्धि यथा योग्य अधिक होगी। अब कार्मण काय योगी जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर चार गति का चारों गति में लिया संगी मिथ्या दृष्टि जीव कार्मण काय योगी ने पूर्व बहुत छूटा है अभी नए पर्याय में उत्पन्न हुआ है वो चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म अकेला नरक में जाने वाला नहीं है चारों गति के लिए नरक से रेंच में जाने वाला भी लिया है या मनुष्य में
तो मनुष्य में आने वाला भी उत्पन्न वाला जीव संगी से संगी में उत्पन्न हो रहा है कि केंद्रीय से भी संगी में उत्पन्न हो रहा है
वहां तो संगी हुआ है वहां वो संगी हुआ है संगी के योग्य अनुभव करेगा ऐसे कहाँ से आया उसकी कोई बात नहीं है हमने स्थिति बंधन में वो असंगी के योग्य करता है ऐसा लिखा तो वेदिनी नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत सर्व विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर चार गति का समय दृष्टि जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। इसका हमको उत्तर जगन्य के बाद देखेंगे तब मिलेगा शायद तो देखेंगे बाद में। अथवा अथवा करके दूसरी बात बताए, सर्व विशुद्धि के बाद कारमान का युग में कब होती है, अथवा जो उपशामक जीव मरकर प्रथम समयवर्ती देव हुआ है वहाँ तो वैकृत मिश्र में लिया था और यहाँ कारमान में ले रहे, वह उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। यह तो आयु का बंध का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ,
प्रथम समयवर्ती बताया जाते हैं तो उसको एक समय में उत्कृष्ट बंध हो।
हाँ, यानी वो कौन सा वेदी नाम गोत्र, क्योंकि वो उपशामक जीव मरकर अभी पहला समय है उसका।
हो गया। हाँ। यानी एक समय में उत्कृष्ट किया उसने,
कारमान कायोग के लिए उत्कृष्ट किया। दो समय में रहे वो पहले समय में उत्कृष्ट करेगा।
देखो यहाँ पता रहे कि उपशामक जीव मरकर प्रथम समयवर्ती देव हुआ।
हाँ।
यानी वो एक समय में देव में पहुंचा ना,
एक समय में पहुंचता है कोई भी जीव।
दो मोड भी हो सकते हैं,
हो सकता है पहले समय में उत्कृष्ट करेगा।
तो यानी देव होने के बाद पहले समय में, ऐसा आपको बताना है या
विग्रह गति में ऑलरेडी वो देव हुआ है?
वही तो। अच्छा अच्छा, विग्रह गति में देव हुआ तो वो जो एक समय है प्रथम समयवर्ती बताए, तो मेरा यही पूछना है कि वो जो बंध होगा उत्कृष्ट बंध, वो एक समय में होगा या उसको भी अंतर मुहूर्त लगता है?
एक समय में,
हर समय
प्रत्येक समय में बंध हो रहा है ना।
ठीक है, उत्कृष्ट बंध पहले समय में।
हाँ, क्योंकि यहाँ वेदिनी नाम गोत्र में प्रशस्त प्रकृतियों को लेना है, उनका अनुभव मैक्सिमम तभी बंधेगा जब विशुद्धि ज्यादा है। तो कारमान का युग में विशुद्धि कब होगी, तो वो तो उपशम श्रेणी में मरकर देव होने वाले की होगी। अब वेद मार्गना शुरू होती है यहाँ से, स्त्री वेदी और पुरुष वेदी जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है। अब यहाँ नरक गति में तो कोई स्त्री वेदी पुरुष वेदी नहीं है, साकार जागृत अब ये पर्याप्त ही जीव होते हैं, परंतु संगी होने चाहिए। पंचेंद्रिय तो होते हैं परंतु संगी कहेंगे तो साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित तीन गति का लिखा ना, संगी मिथ्या दृष्टि जीव, क्योंकि श्रीवेदी पुरुषवेदी असंगी में भी होते, इसलिए संगी को लिया। उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित क्षपक अनिवृत्तिकरण जीव, यानी सवेद भाग का अंतिम अंत का अनुभाग बंध लेना, उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। आयु कर्म का भंग ओग के समान, यानी अप्रमत्त गुण स्थान में वो तत्प्रायोग विशुद्धि वाला उत्कृष्ट बंध करने वाला, नपुसक वेद वाले जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है। तो कहते हैं नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त, यहाँ पर भी तीन गतियां लेना अपन देव को छोड़कर। तो कहते हैं नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर तीन गति का मिथ्या दृष्टि जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। तीन गति का संगी लिखना चाहिए था ना,
लिखा है ना तीन गति का, तीन गति का लिखा है ना?
संगी लिखना था ना,
संगी लिखना था,
जैसे श्रीवेदी पुरुषवेदी में संगी लिखा था ना, तो मिथ्या दृष्टि के पहले वहाँ संगी लिखना चाहिए।
मिथ्या दृष्टि संगी
नहीं, संगी मिथ्या दृष्टि, जैसे श्रीवेदी में पहले संगी डाला है ना वैसा यहाँ पर भी डालना,
ऊपर भी डालना पड़ेगा।
हाँ, हम लिख के रखेंगे, ऊपर तो नहीं लिखा है। मिथ्या दृष्टि के पहले ती गदीयस लिखा ना, जैसे हमने इथि और पूरी समय लिखा था ती गदीयस सन्नी मिथ्या दृष्टि, यहाँ पर भी लिख सकते संगी मिथ्या संगी डबल न सन्नी जिसे आप श्रीवेदी में लिखा है वैसा, क्योंकि नपुसक वेदी में तो सारे आ गए ना एक इंद्रिय से लेकर। वेदनीय आयु, नाम और गोत्र कर्म का भंग स्त्री वेदी जीवों के समान है, यानी वेदनीय नाम और गोत्र में क्षपक अनिवृत्तिकरण और आयु के बारे में अप्रमत्त। अब अपगत वेदी जीवों में, यहाँ पर भी अवगत हुआ, अपगत वेदी, हाँ, चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अब देखो, चढ़ने वाले से उतरने वाले का अनुभाग संकलेश ज्यादा होगा, अनुभाग ज्यादा होगा, क्योंकि घाती कर्मों की बात करें। अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर गिरने वाला उपशामक जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है।
तो यह नवे गुरुस्थान के अंत में जो वेद सफेद, अरे वेद का उदय होने वाला है, वो जीव देना पड़ेगा।
उदय होने वाला नहीं, उदय होने के पूर्व वाला, अपगत वेद का अंतिम समय, अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित है।
अंतर्मुक्त तक उतना ही बंद करेगा, पर ये क्या समानी हो जाएगा ना अंतर्मुक्त तक, कि उसमें अनुभाग में तब्दीली होती है तो अलग अलग हो सकता है, तो वहाँ पे तो परिणाम समान ही है।
आप समान परिणामों की बात करते हैं नाना जीवन की अपेक्षा, और अनुभाग बंध का उत्कृष्ट होता है एक जीव में अंत में।
हाँ, पर ये अंतर्मुक्त तक समान होगा कि अंतर्मुक्त में भी वहाँ पे?
नहीं नहीं, वो तो अनुसमयापवर्तन कब से शुरू होता है, प्रत्येक समय में अलग अलग अनुभाग बंध होता है।
तो स्थिति समान बनती है,
स्थिति समान बनती है अनुभाग में, और वो कांडक होते हैं, वो तो स्थिति के कांडक होते हैं, बंध के नहीं होते।
स्थिति कांडक घात होते हैं, तभी अनुभाग कांडक घात भी होते रहते हैं।
अरे अनुभाग कांडक घात स्थिति के होते हैं, स्थिति बंधापसरण होते हैं, अनुभाग बंधापसरण होते हैं। आपको याद नहीं है उसके चार बातें होती है, कौन सी? विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ती है,
प्रति समय अनंत,
और वहाँ तो अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुणा घटता है,
तो यहाँ
और प्रशस्त का अनंत गुणा बढ़ता है।
तो यहाँ पे उत्तर के समय
अंतिम समय वाला है बंद,
अंतिम समय वाला,
उसके बाद में वो वेदी
होगा। हाँ, सवेदी होगा, वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का भंग ओघ के समान, वो तो पढ़ा हमने, यानी वो क्षपक दसवें गुणस्थान के अंत में लेना।
ऐसा भी नहीं सकता ना, ऊपर भी चला गया वेद, वापस नीचे गिरे नहीं, कि गिरने में लिखा है उसे तो वेदी हो गया, सवेदी हो गया ना।
चढ़ने वाले के बंध घटता है,
घटता
पहले समय में जितना था, उतरने वाले के उसी पॉइंट पर वो डबल है, वो स्थिति में डबल है, अनुभाग में तो और ज्यादा होगा। देखो अभी कषाय मार्गणा की बात शुरू होती है, समझ में आती है बात? ये
अवगत विधि में वेदीय नाम गोत्र का तो शपक होगा,
शपक दसवां गुणस्थान अंत में, यहाँ आयु का सवाल नहीं है, ओके समाज लिखा है ना उन्होंने, यानी वो अंतिम अनुभाग बंध में अवस्थित है, अंतिम समय में है, क्योंकि अनुभाग का बंध प्रति समय घटता है, अनंत गुणा घटता है, और प्रशस्त में अनंत गुणा बढ़ता है। अभी कषाय में क्रोध, मान और माया कषाय वाले जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? संगी, मिथ्या दृष्टि, अभी हमको यहाँ श्रेणी की बात नहीं लेना है, तो संगी मिथ्या दृष्टि को होता है ना, ये संगी मिथ्या दृष्टि, साकार जागृत, नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर चार गति का पंचेंद्रिय जीव, संगी तो पहले बताया, यहाँ पंचेंद्रिय लिखा, उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है, क्योंकि क्रोध मान माया लोभ तो सबको है, लोक को ओग के समान बताया था उन्होंने, लोक के लिए ओग के समान बताया था शायद, लोक कषाय वाले पेज नंबर 8 ओग के समान था वो, क्योंकि 10 हाँ
यहाँ बारंबार लिख रहे हैं अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना,
हाँ
तो नीचे से दूसरी लाइन में तीसरी लाइन में
नीचे से तीसरी लाइन में हाँ
नियम से उत्कृष्ट संक्लेश युक्त, ये तो समझ में आता है
हाँ,
लेकिन आगे लिखा उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित, इसका अर्थ
उत्कृष्ट अनुभाग बंध करने वाला, लोग कषाय वाले तो ओके समान थे ना, इसे तीनों को यहाँ लिया क्योंकि लोभ का उदय तो 10वें के अंत तक था और वहाँ वेदिनी नाम गोत्र का भी घटित होगा, परंतु क्रोध वाले को मान और माया वाले को वेदिनी नाम गोत्र का कहाँ लिखेंगे, उसके अपना उसके जो विच्छित्ति होती बंदे विच्छित्ति या उसके जो उदय का अंतिम समय है वहाँ पर उसका शपक वाले को उत्कृष्ट होगा वेदनीय नाम को, ये मिथ्या दृष्टि तो चारों कषाय वालों के लिए समान, लोक कषाय वाले वेदनीय नाम गोत्र तो 10वें के अंत में और इनके अपने अपने अपना जो कषाय का क्रोध का उदय का काल है वहाँ उसके अंत समय में, इसलिए कहा गया शेष कमों का भंग नपुंसक वेदी जीवों के समान है, नपुंसक वेदी में कहा स्त्री वेदी के समान है, त्रिवेदी में कहा हाँ यानी वो उत्कृष्ट अन्य अंतिम अनुभाग में स्वामी सॉरी वो क्षपक कहा था ना उनमें क्षपक अनिवृत्तिकरण, उत्कृष्ट अनुभाग बंद कब होता है तो उसके अपना उदय का अंतिम समय तब, यहाँ पर भी वैसा ही लेना, मत्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी जीव में अभी ज्ञान मार्गना मत्य ज्ञानी में तो समझते हैं ना चार घाती कर्मों का तो ओके समान होगा, तो मत्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, संगी मिथ्या दृष्टि साकार जागृत और नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त अन्यतर चार गति का पंचेंद्रिय जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है, यानी ओक के समान है वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, यदि मिथ्या दृष्टि की सर्व विशुद्धि का भय तो संयम के सन्मुख वाले होंगे, तो संयम के अभिमुख सर्व विशुद्ध यानी वो करण लब्धि के अंत में लेना उसको, और अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर मनुष्य क्योंकि संयम में तो अभी मनुष्य ही लेना है, उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है, ये ख्याल में आती है बात, आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, पंचेंद्रिय संगी साकार जागृत तत्प्रायोग संकलेश युक्त यानी वो भी नरक की आयु बांध रहा है और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर तिर्यंच और मनुष्य आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है,
तो मिथ्या तो बोले थे देवायु से भी नरकायु का अनुभाग बंध अनंत गुणा हो जाएगा, उत्कृष्ट बताया कितने भी आप शुक्ला दिशा में भी देवायु
वहाँ तो स्थिति की अपेक्षा देखेंगे तो मिथ्या दृष्टि कहाँ की बांधेगा,
सातवें नरक की
देवायु
नहीं तो यहाँ पे
31 सागर की
बराबर यहाँ पे नरकायु का बताया
क्योंकि 33 सागर वाली है
33 सागर वाला
और वो प्रशस्त प्रकृति है और वो प्रशस्त थी ओग में देवायु को ज्यादा लेते
हैं। हाँ, ओग में देवायु को ज्यादा लिया यहाँ पे तो मिथ्यात्व गुरुस्थान में हमेशा अनुभाग बंद देव नरकायु का ही ज्यादा बन देगा।
हाँ, उसी को लिया ना।
हाँ,
क्योंकि आयु इन जनरल में वो संकले शुक्त ने नरकायु ही बांध रहा है, ये तो नक्की हो गया। इसी प्रकार विभंग ज्ञानी जीवन में जानना चाहिए। विभंग ज्ञानी चार गति में है, परंतु आयु का ये भंग तो विभंग ज्ञानी में नरकायु बांधने वाले के होगा।
एक क्वेश्चन था, यहाँ पे हम लोग अनुभव की और उसके बाद देखते हैं, जीव तो सुख पाने के लिए सुख पाने के लिए शास्त्र का अभ्यास करते हैं।
सुख पाने के लिए
शास्त्र का कुछ भी करते हैं तो सुख पाने के लिए करते हैं, तो सभी दृष्टि जीव उसके मन में ऐसे विचार आते हैं कि ये अनुभव।
आप कौन सा सुख की बात करें? आप कौन से सुख की बात करें?
मैं तो अतीन्द्रिय सुख की बात कर रहा हूँ।
तो अतीन्द्रिय सुख की बात ये कुछ करने से नहीं होता,
ये करने से नहीं होती, पर सभी दृष्टि जीव को चलमल अगाढ़ दोष है,
वो वेदक समय दृष्टि को वो तो सूक्ष्म है। हाँ।
उनके अभिप्राय में ऐसे लगा कि प्रशस्त प्रकृति का अनुभव मन ज्यादा बदले तो हमारे लिए अच्छा है,
तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, चलम लगा दो नहीं रहेगा, वो दोष नहीं रहेगा, वो अनाचार हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। अगर वो ऐसा सोचता भी है, विचार भी आता है, अभिप्राय में ऐसा पड़ा है कि जो अच्छा अनुभव बांध कर मैं सुखी हो जाऊंगा या मुझे बांधना चाहिए, अरे बंध ही तीर्थंकर प्रकृति का तो क्या है, वो भी बंध योग्य है, ऐसा अगर मान्यता में अभिप्राय में आ जावे तो ऐसा तो वो मिथ्या दृष्टि ही है, वो समय दृष्टि है ही नहीं। कौन सा भी बंध किसी भी फॉर्म में बिल्कुल अच्छा तो है ही नहीं ना, ये बंध से निर्मुक्त अवस्था ही सर्वथा करने योग्य है। अब वो राग आ रहा है बंध रहा है वो बात अलग है, पर मैं ये करूँ तो जरा अच्छा कर्म बंधेगा, ये तो मिथ्या दृष्टि की मान्यता है। वो तो मिथ्या दृष्टि है, सात तत्वों की भूल चल रही, सभी तत्वों की, खाली एक तत्व की नहीं। हाँ, वो सोलह कारण से भावना है, तो ऐसा लगता है कि सोलह कारण की पूजा की हमने, व्रत किए तो ठीक है।
तो सोलह भावना वाला भी कुछ को भी कर्तृत्व बुद्धि देती है नहीं, हो सकती है।
अरे कर्तृत्व बुद्धि रहेगी तो मिथ्या दृष्टि है, वो खाली हमने भावना के नाम सुने और हमने वो भावना भाई, वो तो भावना भाई ने इच्छा की, वो भावना ने उस रूप भवन समय दृष्टि जो अंतरंग में प्रतपन है, पहली भावना दर्शन विशुद्धि की, समय को जो दृढ़ है उसकी बात है वहां पर। चलो आगे, यानी कोई भी कर्म किसी भी फॉर्म में किसी भी अनुभाग में किसी भी स्थिति में बांधने योग्य नहीं है। हाँ,
कल जो अपने घर में मेहमान आए थे वो यही बताते थे कि ऐसे हमने कई लोग देखे हैं कि रोज गुरुदेव को सुनते हैं और फिर भी उनमें मतलब यत किंचित भी मान्यता में फर्क नहीं पड़ा है, तो हमारा भी ऐसा नहीं होवे कि भाई हम कहीं ना कहीं बंध के लिए लालायित हो जाएं कि मेरे को अच्छा बंध मिले, अच्छा बंध। तो फिर आपने यह सुना क्या अब तक, ऐसा प्रश्न खड़ा किया था उन्होंने, यानी अभी उनके रिश्ते में ही ऐसे लोग हैं कि जो रोजाना स्वामी जी को सुनते हैं और इनको आग्रह करते तुम सोनगढ़ चलो सोनगढ़ चलो, सोनगढ़ क्या करेंगे, बोले इधर भी आप स्वामी जी को टेप पर सुनते हैं, उधर भी जाके टेप पर ही सुनेंगे, हम इधर सुनेंगे, तो उनका उनका झगड़ा होता है।
और बेसिक कुछ मालूम नहीं है बस, अरे स्वामी जी को ही सुनना बिल्कुल, हम भी कहते
मैं ये कह रहा था,
पर बेसिक समझे बिना क्या सुन रहे हो ही पता नहीं है, केवल एक सुनने का हमने एक जैसे उन्होंने भी कहा जैसे भोजन करते ये करते वैसे एक टेप सुनते हैं उन्होंने तो ये शब्द हमें बता दिया,
इसे
दो टाइम हो
गया यही रूटीन बस एक सुनना है बस,
दो घंटा का स्वाध्याय हो गया,
पूजा करने वाले पूजा करते हैं।
नहीं, हमें यही कहना है कि हम जब इतना अभ्यास करते हैं तो मूलभूत बातों को हम नहीं भूलना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है।
ये तो बिल्कुल, ये तो हम ज्ञान किसके लिए, हमारे खाली इंटेलिजेंस या उसके बोले इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे, ये तो हमें भेद ज्ञान के लिए कार्यकारी होने चाहिए,
यानी आत्मसात करना चाहिए जो नियम सिद्धांत है।
बिल्कुल, वो तो मुख्य नियम ख्याल में रखकर हम ये तो उपयोग की सूक्ष्मता होती है, उसमें और ज्यादा दृढ़ता आ जाती है और वस्तु स्वरूप बिल्कुल ख्याल में आता है, कितना स्वतंत्र है वो ख्याल में आता है।
मैं तो कहूंगा श्रीमद जी ने बताया कि शुष्क ज्ञानी हो गए, शुष्क ज्ञानी यानी कि केवल ज्ञान बढ़ाया और उसमें,
अरे पण ज्ञान बढ़ाया वो भी समझ कर कहाँ बढ़ाया, ऊपर ऊपर की बात सुनता है।
वही तो मैं कह रहा हूँ, श्रीमद जी वही बात कह रहे हैं,
वही तो बात,
कोई ज्ञान क्या शुष्क ज्ञानी थी गया, कोई क्रिया जड़ थी गया, तो दोनों ही वही है मिथ्या दृष्टि, यानी हमें उसमें से बाहर निकलना है तो मैं तो कहूंगा कि सिद्धांतों को पकड़ के आगे चलना चाहिए, यानी वो हम आत्मसात करें। लोग कहते हैं
वस्तु का स्वरूप निर्णय होते ही वो तो दृष्टि अपने आप को संभाल लेगी, उसकी चिंता मत करो, दृष्टि कैसी करना है, वो अपने को कैसे पकड़ना है।
देखो देखो अभी अपने यहाँ आने वाले लोग भी बताते हैं कि हमको बहुत लोग पूछते हैं कि आप इतने दिन से जा रहे हो, क्या आपको सामयिक सिखाया, प्रत्यय पचकान सिखाया, बोले नहीं, तो इतना दिन से क्या कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं, जो सिद्धांत सीखकर उसको अपने में उतारना, ये स्वयं का कार्य है।
तो वो ऐसा हर टाइम नहीं होता है,
कोई बात नहीं, एक टाइम तो होता है
हर टाइम नहीं, अभी यहाँ तो नहीं होता, समय दृष्टि को भी संकलित विशुद्धि हो रही कि
नहीं,
अप एंड डाउन यानी उस भूमिका के योग्य संकलित विशुद्धि तो होते रहेगी, पर उससे हम जुदे है ये बात मुख्य है, हम केवल पर्याय को देखते हैं।
मैं तो दूसरी बात बताता हूँ, पहले आप जब अभ्यास नहीं करते थे तो कुछ भी नहीं होता था, अभी 1% हो गया, 2% हो गया, 10% ऐसे बढ़ते जाते, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, हम पहले ही गलत रास्ते पे थे, ख्याल में है ना, वो हमें देखना है। अभी आगे की बात वो उच्च बात बता रही है कि इनसे मैं भिन्न हूँ,
ये वही बात मुख्य पकड़ के रखनी है आपके लिए। टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है तो अच्छा है ना, समय दर्शन जल्दी नजदीक आ रहा है। अरे उसका समय नक्की है कि नहीं, समय नक्की है तो टाइम जा रहा है तो नजदीक आ रहा है।
देखो मैं तो कहूंगा कि पर्याय पर दृष्टि मत रखो, सम्यक दर्शन प्राप्त करना ऐसा दृष्टि मत रखो, अपने त्रिकाली स्वभाव पर हमेशा हम केंद्रित रहेंगे, वो तो पर्याय सलाम ठोक के सामने आएगी।
आप जाते हैं पार्ला मंदिर में, आओ वहाँ पे एसी है, बहुत सुविधा है बैठने की।
वो कहते हैं पार्ला मंदिर में आओ, वहाँ बहुत एसी वगैरह सुविधा है,
बाह्य संयोग बहुत अच्छे है तो आपको सुविधा हो जाएगी।
उनको बोलना संयोगों का ही लक्ष्य करने से सुविधा नहीं, जितनी असुविधा होगी ना उससे जुदा हम। कोई ऐसा है शिविर में? हाँ उन्होंने बताया, नाम बताए।
अरे हम जानते हैं किसकी दौड़ कहाँ तक है, देखो मैं बताता,
ये हमारे पहचान के हमारे जात के एक व्यक्ति है, बोलते हैं दिनेश भाई आप हमारे घर पे आना, उधर ध्यान करने के लिए हमने बोला, अरे उधर तो मेन रोड पे आप रहते हो, हम जैसा रहते हैं शिवाजी पार्क में, वो क्या नाम है उसका, मनोहर जोशी के पहले वो पेट्रोल पंप के बाजू में उनके लिए, तो ध्यान करने का उदाहरण, मैंने ध्यान के लिए रूम बनाया। अच्छा कैसा है? 10x10 का छोटा रूम है, तो एक भी खिड़की नहीं, एक भी दरवाजा नहीं, मतलब जाने के लिए दरवाजा है, उधर आप शांति से बैठ सकते। मैंने कहा यार वहाँ तो इतनी गर्मी होगी और आप कह रहे हैं कि वहाँ शांति है, आवाज़ नहीं आती है। वो कहते आपके घर में कितनी आवाज़ आती है? तो मैंने कहा तो 5 मिनट में तो गर्मी हो जाएगी, पर चिंता मत करो, हमने एसी लगा दिया, एसी में बैठ कर आप, मैंने कहा एसी में बैठकर मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ ये सोचना, ये कहाँ तक सही बात है। तो वैसे ही हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि पार्ला मंदिर में सब एसी है,
जीव तो अपने मोह राग द्वेष और उसमें मोह पड़ा है।
यहाँ तो आपने जो बात बताई संयोगों से मैं भिन्न हूँ,
जुदा हूँ,
ये हम संयोगों की तरफ ही दौड़ रहे, अरे वहाँ तो ये है, फिर मालूम है आपको संडे को तो सबको मुफ्त में खाना मिलता है, तो संडे को यहाँ कोई नहीं आता है।
मेरा सिस्टम तो खाली कैसे था, चारित्र मोह का उदय होने से मान्यता में जब अनंत अनुबंधी का उदय आएगा तभी ये मान्यता में,
मान्यता वो दर्शन मोहने का दोष है, चारित्र मोहने का तो राग है।
नहीं पर राग बहुत बढ़ेगा तो उसके साथ मान्यता में तब्दीली बदलाव हो सकता है।
नहीं, राग बढ़ना कम होना किसको कहेंगे,
किसी वस्तु के प्रति राग आता है तो राग
मिथ्या दृष्टि को आता है कि समय दृष्टि को आता
दोनों पास है।
तो मिथ्या दृष्टि का तो वहाँ दर्शन मोह पड़ा है मुख्य, वहाँ है अनंतानुबंधी भी है, वो भले कितना मंद भी क्यों ना हो, अरे मुझे तो ये कुछ नहीं चाहिए ऐसा है वैसा है, अभी द्रव्यलिंग को क्या चाहिए संयोगों में से, जंगल में रह रहे कोई अन्य तो इच्छाएं ऐसी डायरेक्ट तो है ही नहीं, फिर भी वो शरीर में आत्मबुद्धि राग में आत्मबुद्धि पड़ी, यानी वो राग करने योग्य है मैं कर रहा हूँ ऐसी वो उसके साथ एकमेक पना पड़ा है।
जब भी अनंत अनुबंधि का उदय हो जाता है साक्षात धर्म में जाता है तो वो जीव नियम से मिथ्यात्म में जाएगा,
नियम से मिथ्या दृश्य, पर जब तक सम्यक तो यानी साधन में तब तक उसका मिथ्यात्म नहीं
उदय नहीं है। पर वो ही मेरे को हमेशा क्वेश्चन रहता है कि अनंत अनुबंधि का उदय हुआ उसीलिए उसका मिथ्यात्व का उदय हो गया
ना, मिथ्या तो उपशमित था, उपशम है अंतर्मूर्त के लिए, अनंतानुबंधि का कौन सा उपशम था,
प्रशस्त उपशम
अनंतानुबंधि का
प्रशस्त उपशम था
ना, उसमें गैप पड़ी थी
नहीं पड़ी थी अप्रशस्त उपशम,
तो वहाँ के निषेक पड़े थे एक समय ऊपर, अनंतानुबंधि के निषेक उदय के एक समय ऊपर पड़े थे और उदय में आते होते प्रत्यक्षण प्रत्यक्षण रूप से उदय में आ रहे थे संबल रूप से। मिथ्या तो क्या है अंतर्मूर्त ऊपर पड़ा है वो उपशमित पड़ा है, तो जब तक उसका उपशम का काल पूरा नहीं होता वो उदय में नहीं आ सकता, उपशम सम्यक का काल जो है वो छोटा अंतर्मूर्त है और मिथ्या तो बहुत बड़े अंतर्मूर्त के ऊपर पड़ा है, वो गैप बहुत बड़ी है संख्या उससे उपशम सम्यक के काल से भी संख्यात गुणा गैप हुए, मिथ्या तो इतना ऊपर पड़ा है जब तक उसका अंतर्मूल पूरा नहीं होता वो अपनी जगह छोड़कर नीचे नहीं आ सकता, तो उसके पहले अनंतानुबंधी का उदय हुआ, क्यों जीव ने अनंतानुबंधी किया, कर्म के उदय से जीव गिरा ऐसा भी मत कहो, दोनों का समय एक है, जीव ने अनंतानुबंधी कषाय किया तो वो तो सम्यक तो छूट गया, उसका नाम उन्होंने साधन सम्यक पे रख दिया, मिथ्या तो उदय उसका जो उसका उपशम का काल पूरा हुआ है तो मिथ्या तो के निषेक नीचे आ जाएंगे, निषेक रचना चालू हो जाएगी उदय के समय से लेकर तब उसका मिथ्या तो का उदय होगा, कषाय के उदय से गिरना ऐसे ग्यारहवें गुणस्थान में हमने देखा था, चारित्र मोहनीय सारा उपशमित है अंतर्मूर्त के लिए उपशमित है, उसके पहले उसका उदय नहीं आएगा, समझ गए, तो उदय आया गिरा इसलिए उसके नहीं उसका काल पूरा हुआ, किसका उपशम का काल पूरा हुआ, उपशमित अंतर्मूर्त के लिए किया था, उसके अधिक वो उपशमित रह नहीं सकता है। अभी क्या प्रश्न है,
नहीं क्लैरिटी,
चलो आगे आप कुछ कंफ्यूज रहते हो,
नहीं नहीं कंफ्यूज नहीं, मैं थोड़ी क्लैरिटी चाहता था,
यानी बिल्कुल क्लैरिटी करो,
क्लैरिटी करने के लिए तो बैठे हैं भाई, क्या बताया अभी मैंने,
सबको यही होता
है, सबको यही होता है कहते हैं। देखो अभी 13 नंबर लास्ट पैराग्राफ, अभिनिबोधि ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानी, अब ये समय दृष्टि जीव है, चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी कौन है, सब पर्याप्तियों से पर्याप्त साकार जागृत उत्कृष्ट संकलेश युक्त, अब लिखा है मिथ्यात्व के अभिमुख है ना, और अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंद में अवस्थित अन्यतर चार गति का असंयत समय दृष्टि जीव, मनुष्यों में तो ऊपर के भी गुणस्थान होते हैं, पांचवें छठे से भी मिथ्यात्व में आ सकता है, पर चौथे से मिथ्यात्व में आने वाला जीव लिया, उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदनीय आयु नाम और गोत्र कर्म का भंग, अभी समय दृष्टि है तो वेदनीय नाम गोत्र को तो शपक सूक्ष्म सांप्राय लेंगे अंतिम, और ये अप्रमत्त में आयु को लेंगे, उसका भंग ओघ के समान है। इसी प्रकार अवधि दर्शनीय और समय दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। मनःपर्य ज्ञानी जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? नियम से उत्कृष्ट संक्लेश युक्त असंयम के अभिमुख। देखो मनःपर्य ज्ञानी इस मिथ्या तो में नहीं जाएगा, वो चौथे में जा सकता है और उसका मनःपर्य ज्ञान भी छूटेगा, तो असंयम के अभिमुख और अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर प्रमत्त संयत जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। चौथे पहले में नहीं, चौथे में जाता, चौथे में जाता, असंयम में पहले में नहीं, कभी नहीं जाता। मिथ्या तो के अभिमुख नहीं कहा, असंयम के अभिमुख कहा।
मनुष्य को जो संयमी जीव को मनःपर्य ज्ञान होता है वो उसी पर्याय में चौथे गुण स्थान में जा सकता है,
वही तो लिखा है ना असंयम के अभिमुख।
नहीं वो तो मरण की अपेक्षा भी देख सकते हैं,
तो उसका संक्लिश क्यों होगा?
तो वही
मरण वाला तो सातवें में मरकर भी जा सकता है, श्रेणी में मरकर भी जा सकता है, चौथे में।
नहीं पर मनुष्य को एक बार मन कर गया प्रकट हुआ तो वो चौथे के चौथे में जा सकता है,
बिल्कुल जाता है ना। ये क्या लिखा है यहाँ पे?
तो मन कर ज्ञान का जगन्य काल अंतर्मूर्ति हो जाएगा।
अभी उसको अपना विषय चल रहा है क्या? आप कुछ न कुछ कहाँ जोड़ देते हो। मनःपर्य यानी चौथे के अभिमुख होता है, तो मनःपर्य का जगन्य काल अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त ऐसे भी उसको चौथे में क्यों भेजते हो, संकलेश क्यों कहते हैं? मरकर जाएगा देव में तो भी हो सकता है। मनःपर्य ज्ञान का वो श्रेय मार्गणा का काल है, धवला पुस्तक चौथी निकाल कर कल मुझे बताना, कल मुझे बताना, चौथी पुस्तक देख के बताना। हाँ निकालो मत, उनको जरा ढूंढने दो, प्रश्न करने वालों की जवाबदारी है कुछ होता ही है। हाँ
एक भाई साहब ने प्रश्न पूछा है
अभी।
हाँ इस भव चक्र में औक्षमिक सम्यक तो किसी जीव को कितनी बार हो सकता है?
उसी
किस इस भव चक्र में
हाँ
औषमिक सम्यक तो कितनी बार हो सकता है? मैं ये कहूँगा हम प्रश्न का आज उत्तर देंगे, अगले टाइम दोपहर में 3 से 4 2407 ये नंबर पे आप कांटेक्ट करें। आज तो हम उत्तर देंगे लेकिन चालू प्रवचन में आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाएगा। और ये प्रश्न है कि औपशमिक सम्यक तो असंख्यात बार हो सकता है,
पल्ले के असंख्यात वो प्रथम औपशम।
हाँ प्रथम औपशम वही तो
एक भव में नहीं, भव चक्र में बताया,
भव चक्र में। और द्वितीय औपशम सम्यक जो है वो भव चक्र में अधिक से अधिक चार बार
होगा, क्योंकि उपशम श्रेणी चार बार चल के उतर सकता है।
टेलीफोन नंबर हमारे पुस्तकों के ऊपर है, हमारे वेबसाइट पर भी है।
हाँ आगे बढ़ते हैं। ये शेष कर्मों का भंग, शेष है ना अगाती, ओघ के समान है, यानी वेदनीय नाम गोत्र का शपक के होगा, आयु के सातवें गुण स्थान में होगा। इसी प्रकार संयत जीवों के जानना चाहिए। अभी संयमी तो संयत केवल कहा, वो मिथ्यात्व के अभिमुख भी हो सकता है। इतनी विशेषता है कि अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित और मिथ्यात्व के अभिमुख संयत जीव चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी। ये समझ में है ना?
ये
क्योंकि मनःपर्य ज्ञान में संकलेश ज्यादा कब है? चौथे गुण स्थान के सम्मुख वाला जीव लेना है। मनःपर्य ज्ञानी की मार्गणा नहीं, ये संयत कहने से छठे से वो अलग, जिसको मनःपर्य ज्ञान नहीं है उसकी बात है, क्योंकि मनःपर्य ज्ञान विद संयम क्यों ही होती है, परंतु वो तो मिथ्या तो में नहीं जाएगा। पर सारे संयत मनःपर्य ज्ञानी नहीं है, हाँ देखो देखो मिथ्या तो की अभिमुख होगी ना इसी प्रकार
तो मन बड़े ज्ञानी तो कालांतर में तो मिथ्या तो ना डाल सकते हैं ना कि उसमें ही के वो नियम से
नहीं नहीं कालांतर जा सकते हैं कौन से वो विपुल मति वाले हैं वो तो उसी भाव में मोक्ष जाएंगे और रुजुमति वाले हैं वो तो गिर भी सकते हैं ये बात है।
मेरा वही प्रश्न था मन परिज्ञान नहीं भी हो सके आके निकल भी जावे
हाँ
एक ही भाव में
देह में चला जाएगा तो फिर बाद में
नहीं,
तो
हाँ। अभी इस भाव में किसी जीव ने मन परिज्ञान की प्राप्ति की है उसी भाव में मन परिज्ञान उसका निकल
छूट जाएगा क्योंकि अभी असंयम के अभिमुख हुआ है तो बाद में भले वो संयमी भी हो जाएगा तो उसको मन परिज्ञान प्रकट हो गया ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मन परिज्ञान 12 तक है हाँ छठे सातवें में रहते हुए मनोपरिज्ञान छूटने का कोई कारण नहीं है उसके
चौथे में आएगा तो ही छूटेगा चौथे सातवें
पर एक बार मनोपरिज्ञानी और सपोज वो जीव गिरे नहीं
देव में चला देव में चला जाए
तो फिर उसका थ्रू आउट रहेगा सपोज अभी वो मनुष्य में नहीं
गिरे नहीं 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 वो देव में तो होता ही नहीं है
नहीं नहीं वो उस पर्टिकुलर मनुष्य की बात कर
वो रह सकता है ना उसका उसको रहेगा
रहेगा
हाँ छठे सातवें में रहता है तो रहेगा उसका वही रुजुमति वाला वही कहा रुजु विपुलमति वाला तो मोक्ष जाता है
हर मुनियों को ये होगा
नहीं 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 बिल्कुल नहीं हाँ पर हमेशा वो मनोपरिज्ञानी वाले हमेशा रहेगी इस विश्व में तीर्थंकर जब मुनि अवस्था धारण करते हैं उनका तो नियम से होता है सातवें गुणस्थान प्रकट किया तो मन परिज्ञान भी प्रकट होता है
किसकी बात
की तीर्थंकर का जीव मन पर मुनि पद धारण करते हैं तब और ये गणधर के जीव को भी होता है ना
नहीं पर शपथ श्रेणी चढ़ता है उसको नियम से होगा ऐसी बात नहीं है
बिल्कुल नहीं है अरे शपथ श्रेणी चढ़कर मति शुद्ध ज्ञान वाला भी केवल ज्ञान प्राप्त कर
जा सकते हैं
वो तो दो वो क्यों रिद्धि कहे दूसरे के मन की गंदी बात क्यों कहते हैं उनके वो रिद्धि है बस इतनी है।
आपने अभी जो बताया मन परिज्ञानी निरंतर रहेंगे
हाँ।
मन परिज्ञानी निरंतर रहेंगे ही
हाँ।
तो ये हम निश्चित कर सकते हैं कि तीर्थंकर हमेशा होते ही है और तीर्थंकर होंगे तो उनके गणधर भी होंगे और गणधर है वो चार ज्ञान के धनी है तो उनको मनोपरीय ज्ञान है यानी ये बात सिद्ध होती
तो है। अन्य भी मुनि बहुत सारे होते हैं
उनकी बात तो छोड़ो पर ये तो कंफर्म है
गणधर तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे तीर्थंकर भी जो अभी दीक्षा ली हुई है और अभी उनको केवल ज्ञान नहीं प्रकट चार हो जाते हैं ना उनके मतिशुद्ध अवधि तो जन्म से था
नहीं नहीं मेरी बात ये
गणधर के भी हाँ अभी जो समय दृष्टि थे जैसे इंद्रभूति की बात आती है वह मानस सम्भ के तो समय दर्शन हुआ समय दर्शन हुआ मुनि दीक्षा लिया और फिर सातवें गुणस्थान में गए तब जाके बाद में मन परिज्ञान
मैं तो यही बात बता रहा था कि मन परिज्ञान निरंतर मार्गना है यानी वो हमेशा रहेगा
हमेशा उसमें जीव रहेंगे
प्रूव करने के लिए इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं और आप जो बता रहे कि अन्य मुनि भी मन परिज्ञान
होगी
लेकिन उनको हमको प्रूव करना कठिन जाएगा
प्रूव तो हम आगम से ही कर सकते हैं
हाँ वही तो हाँ। मैं कह रहा हूँ पर ये तो तर्क
ये
से
तो
हम
हमेशा
नक्की
ही
कर सकते
ही
हैं
होते
ना
बिल्कुल होते ये 5 मिनट देखो संयत को तो मिथ्या तो के अभिमुख वाले को संकलेश ज्यादा हो गया इसी प्रकार सामायिक और छेदोपस्थापना संयत जीवों के जानना चाहिए अभी सामायिक छेदोपस्थापना छठे से नौवे तक है चार घाती कर्मों का तो मिथ्या तो के अभिमुख हुआ परंतु वेदिनी नाम गोत्र का कहाँ होगा वेदिनी नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी अनिवृत्ति क्षपक जीव होता है और वो भी क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला नवे के अंत में नवे के अंत में अब परिहार विशुद्धि संयत जीवों में वो तो छठा सातवां गुणस्थान दोनों हाँ नवे गुणस्थान नौवे गुण स्थान वाला क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला अंतिम समय में वेदनीय नाम गोत्र का ये तो प्रशस्त कर्म है ना। हाँ वेदनीय नाम गोत्र में वो तो क्षपक में जो लेते हैं हम अंतिम अनुभाग बंध में, वेदनीय में साता वेदनीय लेते हैं, नाम में यशस कीर्ति लेते हैं और उच्च गोत्र को लेते हैं, उनको वो मैक्सिमम है। अभी तक उसमें ऐसे देखा था हमने, दसवें के अंत में देखा था वेदनीय नाम गोत्र को, यहाँ नौवे के अंत में देखना है क्योंकि सामयिक छदोपस्थान नौवे तक है। वैसे सूक्ष्म सांप्राय में भी ऐसा ही लेना पड़ेगा। देखो सूक्ष्म नीचे देखो अभी यहाँ साकार जागृत सर्व विशुद्ध अन्यतर अप्रमत्त जीव उक्त ये सारी परिहार विशुद्धि, परिहार विशुद्धि। हाँ मैं परिहार विशुद्धि की चौथी लाइन में चली गई। परिहार विशुद्धि संयत जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संक्लेश युक्त सामायिक और छेदोपस्थापना संयम के अभिमुख। देखो इसका संयम छुटकर वो मिथ्या तो में असंयम में नहीं जाएगा, परिहार विशुद्धि वाले हैं तो रेगुलर होगी उनकी परिहार विशुद्धि छूट गई, बस इतना। सामायिक हो छठा सातवा में ही रहेगा पर वो छठे सातवें वाले सामायिक छेदोपस्थापना वाले कहलाए। यहाँ क्या लिखे के नियम से उत्कृष्ट संक्लेशुक्त सामायिक और छेदोपस्थापना संयम के अभिमुख और अंतिम अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर प्रमत्त संयत जीव। छठे में उसका संकलेश ज्यादा है ना, ये छठे में वो परिहार विशुद्धि में से वो सामायिक छेदोपस्थापना में आ गए। उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है, यानी छठे में ही उनके परिहार विशुद्धि थी और उसमें से छठे ही में जा रहे हैं, परंतु वो परिहार विशुद्धि छूटने वाली है, बस इतना लेना। केवल चढ़ते समय ही छूट कर वो जाते ऐसा नहीं, ये तो संकलेश में भी होगी। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अभी परिहार विशुद्धि केवल छठे और सातवें में है, अभी सातवें में लेंगे अधिक विशुद्धि वाला लेंगे। तो साकार जागृत और सर्व विशुद्ध अन्यतर अप्रमत्त संयत जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। ये तो समझ में अभी आसान है। आयु कर्म का भंग ओग के समान है, अप्रमत्त वाला लेना, अप्रमत्त गुण स्थान करके।
तो परिहार विशुद्धि वाला जब श्रेणी चढ़ेगा तभी उसका सामायिक छेदोपस्थापना होके वो श्रेणी,
हाँ उसका हो जाएगा।
पर यहाँ पे जो विशुद्धि लिए वो सर्व विशुद्ध अप्रमत्त परिहार विशुद्धि वाला वो अलग है।
हाँ वही जो उसमें चढ़ने वाला लेंगे
श्रेणी चढ़ने वाला तो वो सामायिक छेदोपस्थापना
उसके पर्वे जब तक परिहार विशुद्धि है तब तक लेना।
अच्छा विशुद्धि
परिहार विशुद्धि रहते हुए जब तक वो सामायिक नहीं हुआ है सर्व विशुद्धि में
तब ले। ऐसा नहीं है कि विशुद्धि में भी वो सामायिक छेदोपस्थापना में जा सकता है?
ना 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 जाता, वो क्यों जाएगा? विशुद्धि के कारण सामायिक छेदोपस्थापना नहीं होती।
वही मेरा क्वेश्चन
है। नहीं छठा सातवा चल रहा है, रेगुलर परिहार विशुद्धि है, सातवें के योग्य में जितनी उसकी विशुद्धि हो सकती है परिहार विशुद्धि के रहते हुए।
नहीं मेरा क्वेश्चन क्या है,
आपका प्रश्न ये है श्रेणी चढ़ने वाले की बात
ना, परिहार विशुद्धि वाला भी श्रेणी चढ़ सकता है, वो सामायिक छेदों पर सप्ताह में जाके श्रेणी चढ़ेगा।
सातवें गुणस्थान में उसकी परिहार विशुद्धि रहेगी, आठवें में जाएगा तो सामायिक संयम हो गया। छठा ऐसा की जरूरत नहीं, सातवें में रहते उसके
योग्य परिहार विशुद्धि में उसमें तीन परिणाम परिणाम हो सकते हैं जो श्रेणी के होते हैं।
क्यों नहीं होगे, हो सकते हैं उसमें क्या, उसके आठवें में जाएगा तो सामायिक छेदों को सपना कहलाएगा। नहीं तो कहते ना जैसे वहाँ संकलेश के सन्मुख हो ऐसे सामायिक के सन्मुख हो ऐसे यहाँ पर भी सामायिक के सन्मुख लिख देखते
तो परिहार विशुद्धि में
उसके सर्व विशुद्धि लेना, बस इतना ही लेना।
तो सर्व विशुद्धि तो आठवें के सन्मुख वाले जीव को ही होगा ना,
उत्साहित करने वाले को भी हो सकती है। साइक भी तो कर सकता है।
हाँ,
चलो रुकेंगे यहाँ अभी, और संहिता संहिता और वो सब सूक्ष्म संप्रदाय बाकी है। चावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।
नमो यंत्रणम नमो सिद्धानम नमो आयनम नमो उद्गनम नमो लोय नमो 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 नमो